लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि महिलाओं की गरिमा और अपार मूल्य को हर संस्कृति में मान्यता दी जाए तथा विश्व के विभिन्न हिस्सों में उनके साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त किया जाए। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवारीय आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, आश्चर्यचकित होना मानव के लिए एक कृपा है। संत पापा फ्रांसिस ने इसके संबंध में कई बार हम ख्रिस्तियों से कहा है कि हम ईश्वर से आश्चर्यचकित होने की कृपा मांगें। यदि हम अपने जीवन में गौर करें तो हम पाएंगे कि ईश्वर हमें अपने कार्यों के माध्यम रोज दिन के जीवन में हमें विभिन्न रूपों में आश्चर्यचकित करते हैं। उनके आश्चर्य को देखने और उनका अनुभव करने हेतु हमें अपने मन दिल को खुला रखने की जरूरत है। यदि हम अपने में सतर्क हैं, यदि हम अपने हृदय के अंतस्थल में अपनी भावनाओं की थाह लेते हैं तो निश्चित तौर पर हम हर घड़ी अपने जीवन में ईश्वर के आश्चर्य को अनुभव करेंगे, जो हमें उनके प्रेममयी उपस्थिति में बने रहने को मदद करेगा। श्रोताओ, पास्का के तीसरे रविवार आराधना विधि चिंतन हेतु लिए गए सुसमाचार में हम शिष्यों में एक आश्चर्य के भाव को पाते हैं, जिसे वे पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त को अपने बीच में पाकर करते हैं। शिष्यों को यह विश्वास नहीं होता है कि मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त उनके साथ उनके बीच में उपस्थित हैं। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है मानो वे एक स्वप्न लोक में हैं। आइए हम सुसमाचार में प्रभु वचनों का श्रवण करते हुए इस बात की थाह लें और अपने आप से पूछें कि पिछली बार मैं कब अपने में आश्चर्य का अनुभव किया था। क्या मैं ईश्वर के आश्चर्य को अपने जीवन में अनुभव करता हूँ? ईश्वर के आश्चर्य रूपी अनोखी कृपा हमें किन रूपों में और कैसे आती है?
तब उन्होंने बताया कि रास्ते में क्या क्या हुआ और कैसे उन्होंने ईसा को रोटी तोड़ते समय पहचान लिया था। वे इन सब घटनाओं पर बातचीत कर ही रहे थे कि ईसा उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वे विस्मित और भयभीत होकर यह समझ रहे थे कि वे कोई प्रेत देख रहे हैं। ईसा ने उनसे कहा, तुम लोग घबराते क्यों हो? तुम्हारे मन में संदेह क्यों होता है? मेरे हाथ और मेरे पैर देखो, मैं ही हूँ। मुझे स्पर्श कर देख लो, प्रेत के मेरे जैसा हाड़ मांस नहीं होता। उन्होंने यह कहकर उनको अपने हाथ और पैर दिखाए। इस पर भी जब शिष्यों को आनंद के मारे विश्वास नहीं हो रहा था और वे आश्चर्यचकित बने हुए थे, तो ईसा ने कहा, क्या यहाँ तुम्हारे पास खाने को कुछ है? उन्होंने ईसा को भूनी मछली का एक टुकड़ा दिया। उन्होंने उसे लिया और उनके सामने खाया। ईसा ने उनसे कहा, मैंने तुम्हारे साथ रहते समय तुम लोगों से कहा था कि जो कुछ मूसा की संहिता में और नबियों में तथा भजनों में मेरे विषय में लिखा है, सबका पूरा हो जाना आवश्यक है। तब उन्होंने उनके मन का अंधकार दूर करते हुए उन्हें धर्म ग्रंथ का मर्म समझाया और उनसे कहा, ऐसा ही लिखा है कि मसीह दुख भोगेंगे तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेंगे और उनके नाम पर यरूशलेम से लेकर सभी राष्ट्रों को पाप क्षमा के लिए पश्चाताप का उपदेश दिया जाएगा। तुम इन बातों के साक्षी हो।
श्रोताओं, सुसमाचार के सुमधुर वचन हमें उस अद्भुत खुशी से भर दे जिसे पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त हमारे जीवन में आते और हमें प्रदान करते हैं। हम उनके पुनरुत्थान की खुशी को अनुभव करने हेतु अपना मन और हृदय खुला रख सकें। श्रोताओ, प्रेरित चरित से लिया गया आज का पहला पाठ हमारे लिए एक अद्भुत आश्चर्य को व्यक्त करता है, जहां पेत्रुस यहूदियों के सामने खुलकर सच्ची बातों को कहते हैं। वे उन्हें कहते हैं कि आप सबों ने एक निर्दोष व्यक्ति को पिलातुस के हवाले किया। वे उन्हें रिहा करना चाहते थे, लेकिन उनके बदले आपने एक हत्यारे की रिहाई की मांग की। आपने जीवन के अधिपति को मार डाला, लेकिन हमारे ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से पुनर्जीवित कर दिया है। एक व्यक्ति जिसने डर के मारे 3 बार अपने स्वामी को अस्वीकार किया, जो दुबक कर पिलातुस के दरबार से भाग निकला, आज वही व्यक्ति को हम खुले आम सत्य को घोषित करते हुए सुनते हैं। एक साधारण मछुआरा शास्त्रियों और फरीसियों को उनके किए गए कार्यों का आईना दिखलाता है। यह निश्चित तौर पर हमें आश्चर्यचकित करता है। सत्य की इन बातों को बेहिचक दोषीदारों के सामने रखने की शक्ति उसे कहां से मिली? क्या पेत्रुस को इन बातों को कहने में मौत का भय नहीं लगा? श्रोताओ, हम पेत्रुस में पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्त की विजयी ज्योति और जीवन की सच्चाई को पाते हैं। पुनरुत्थान के द्वारा यीशु ने जिस जीवन की सच्चाई को हमारे लिए खोला है, पेत्रुस उसी सच्चाई और जीवन की ज्योति से अपने को साराबोर पाते हैं। मुक्तिदाता के पुनरुत्थान ने मृत्यु को हमसे दूर कर दिया है, अतः पेत्रुस में मौत का भय और कोई संकोच नहीं रहा, जिसके कारण वे खुले रूप में हत्यारों को हत्यारा और अपराधियों को अपराधी घोषित करते हैं। पुनर्जीवित प्रभु उनके लिए शक्ति और साहस का स्रोत बनते हैं, जिससे प्रेरित होकर वे पुनरुत्थान का साक्ष्य सबों के लिए प्रस्तुत करते हैं। श्रोताओं, पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त के अनुयायियों के रूप में हम सत्य को घोषित करने और उनके और उसके अनुरूप जीवन यापन करने हेतु बुलाए गए हैं। हमारा बुलावा जीवन का साक्ष्य देने हेतु हुआ है, जो स्वयं पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्त हैं। संत याकूब इसे ईश्वर की आज्ञाओं के अनुसार जीवन यापन करने की बात कहते हैं, जो आज के दूसरे पाठ में हमारे लिए कहा गया है। व्यक्ति जो कहता है कि मैं ईश्वर को जानता हूं, लेकिन वह ईश्वर के नियमों का पालन नहीं करता, तो वह अपने में झूठा है और उसमें सच्चाई नहीं है। वहीं जो व्यक्ति ईश्वर के नियमों के अनुरूप जीवन जीता है, वह अपने जीवन के द्वारा ईश्वर के प्रेम का साक्ष्य देता है। ऐसे व्यक्ति निर्भयता में ईश्वर के प्रेम को अपने जीवन में जीते और अपने सच्चे कार्यों में उन्हें व्यक्त करते हैं। श्रोताओं, आज के सुसमाचार में हमने यीशु को अपने शिष्यों के बीच प्रकट होते और उन्हें आनंद से भरते हुए उनके बीच से डर, संकोच और हर तरह के संदेह को दूर करते सुना। वे उन्हें पूछते हैं कि तुम्हें संकोच क्यों होता है? यही सवाल वे हम सबों से भी करते हैं कि तुम्हें संकोच क्यों होता है? हमारे संकोच का कारण भय है, जो हम में से हर किसी के जीवन में व्याप्त है। अपने संकोच के कारण हम उन बातों को नहीं कहते जिन्हें हमें कहने की जरूरत है, क्योंकि हमें भय लगता है कि इसका परिणाम क्या होगा। अपने संकोच में हम अपने को शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक रूप से भयग्रसित पाते हैं। पुनर्जीवित प्रभु हमें शिष्यों की भांति इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि वे हमारे साथ हैं। ये वे ही हैं जिन्होंने हमारे लिए सब कुछ सहते हुए मृत्यु के उपरांत नव जीवन की सौगात लाई है। श्रोताओ, यीशु हमारे मन और दिल के अंधकार को दूर करते हैं, जिससे हम दुनिया में उनके नाम और उनके मुक्तिदायी कार्यों की घोषणा कर सकें। आइए हम पुनर्जीवित यीशु से निवेदन करें कि वे हमें भय से मुक्त करें, जिससे हम उत्साह और जोश में अपने जीवन के आश्चर्य को दूसरों के संग साझा करते हुए मुक्तिदाता के नाम को दुनिया के सीमांतों तक ले जा सकें।
जीवन देने वाले जीव के मृत्यु पर विजय हो के जीते,
वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप फ्रांसिस जयंती वर्ष 2025 के समारोह ही उद्घोषणा करेंगे। वैटिकन ने पोप फ्रांसिस के धर्मविधि कार्यक्रमों की सूची प्रकाशित करते हुए खुलासा किया है कि वे मई में विभिन्न धार्मिक समारोहों की अध्यक्षता करेंगे। गुरुवार 9 मई को वे स्वर्गारोहण महापर्व के अवसर पर संध्या वंदना का नेतृत्व करेंगे और इसी दौरान वे जुबली के संकेत पत्र बुल ऑफ इंडिक्शन की घोषणा करेंगे। पुनरुत्थान के 40 दिन बाद यीशु के स्वर्गारोहण का उत्सव मनाया जाता है। 10 दिन बाद 19 मई को पोप फ्रांसिस पेंतेकोस्त महापर्व के अवसर पर ख्रिस्त्याग अर्पित करेंगे। उसके बाद 26 मई को पौत्र त्रित्व में ईश्वर के महापर्व पर वे पुनः समारोही मिस्सा बलिदान की अध्यक्षता करेंगे। कार्यक्रम सूची के अनुसार पोप 28 अप्रैल को इतालवी शहर वेनिस की प्रेरित की यात्रा भी करेंगे। 2 से 13 सितंबर 2024 को संत पापा फ्रांसिस इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी, तिमोर लेस्ते और सिंगापुर के प्रेरित की यात्रा करेंगे। वैटिकन प्रेस कार्यालय ने शुक्रवार को घोषणा की कि पोप फ्रांसिस सितंबर की शुरुआत में एशिया के 3 देशों और ओशिनिया के 1 देश का दौरा करेंगे। उन्होंने विदेश में अपनी 43वीं प्रेरित की यात्रा के लिए राष्ट्राध्यक्षों और स्थानीय कलीसिया के अधिकारियों के निमंत्रण को स्वीकार किया है। पोप फ्रांसिस सबसे पहले इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता जाएंगे, जहां वे 3 सितंबर को उतरेंगे और 6 सितंबर तक रहेंगे। इसके बाद 6 से 9 सितंबर को पापुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरिस्बी और वेनिमो का दौरा करने के लिए पूर्व की ओर उड़ान भरेंगे। उनका अगला पड़ाव 9 से 11 सितंबर को तिमोर लेस्ते की राजधानी दिल्ली में होगा। वहां से पोप 11 से 13 सितंबर को 3 दिवसीय यात्रा के लिए सिंगापुर जाएंगे। पोप फ्रांसिस ने पहली बार दिसंबर 2023 में इस क्षेत्र की यात्रा की संभावना का उल्लेख किया था। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल देश है और कैथोलिकों की संख्या 8 मिलियन से अधिक या कुल आबादी का 3.1% है। पापुआ न्यू गिनी की लगभग 32% आबादी कैथोलिक है, जिनकी संख्या लगभग 2 मिलियन है। तिमोर लेस्ते में कैथोलिकों की बहुलता है, जहां कुल आबादी का लगभग 96% संख्या कैथोलिकों की है, यानी 10 लाख से अधिक लोग कैथोलिक हैं। और सिंगापुर में लगभग 3,95,000 कैथोलिक रहते हैं, जो पूरी जनसंख्या का लगभग 3% है। यीशु हमें जानते और प्यार करते हैं। यदि हम उनके साथ हैं तो हमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे लिए हर क्रूस पुनरुत्थान में, हर विषाद आशा में और हर शोक नृत्य में बदल जाएगा। उक्त बात संत पापा फ्रांसिस ने अपने एक संदेश में कही है और इसके द्वारा प्रभु के पुनरुत्थान की याद दिलाते हुए सभी पीड़ित लोगों को सांत्वना प्रदान की है। इस बीच संत पापा फ्रांसिस ने शनिवार को संत प्रकरण विभाग के अध्यक्ष कार्डिनल मार्चेलो सेमिरारो से मुलाकात करते हुए संत घोषणा के रास्ते पर 3 नए उम्मीदवारों की आज्ञाप्तियों का अनुमोदन दिया। उन्होंने धन्य एलेना गुएरा के माध्यम से हुए चमत्कार को मान्यता दी है। धन्य एलेना गुएरा पौत्र आत्मा की ओब्लेट धर्म समाज की संत जीता के धर्म बहनों के संस्थापिका हैं। उनका जन्म 23 जून 1835 को इटली में हुआ था और निधन 11 अप्रैल 1914 को हुआ। दूसरे उम्मीदवार के रूप में संत पापा ने ईश सेवक गैतानो ग्लाउसेला बालवे की शहादत को मान्यता दी है। वे एक धर्म प्रांतीय पुरोहित थे। उनका जन्म 5 अगस्त 1863 को स्पेन में हुआ था। 15 अगस्त 1936 को ख्रिस्ती विश्वास के कारण उनकी हत्या कर दी गई। और तीसरे उम्मीदवार के रूप में संत पापा फ्रांसिस ने ईश सेविका तेरेसा लान फ्रांको के विरोचित सद्गुणों को मान्यता दी है। वे लेवका की संत मरिया की पुत्रियों के धर्म संघ की सदस्य थीं। उनका जन्म 24 मार्च 1920 को इटली में हुआ था। स्पानी विश्व विरासत शहर समूह के सदस्यों से मुलाकात में पोप फ्रांसिस ने कहा कि लोग अपने शहरों और संस्कृतियों का निर्माण अपने ऐतिहासिक परिस्थितियों से ईश्वर पर विश्वास को मिलाकर करते हैं। पोप फ्रांसिस ने शनिवार को स्पानी विश्व विरासत शहर समूह के सदस्यों से मुलाकात की, जिससे 1993 में उनके शहरों की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए स्थापित किया गया है। वेटिकन सिटी में विभिन्न स्पानी शहरों के प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए पोप ने कहा कि दुनिया का सबसे छोटा राज्य एक समृद्ध विरासत को सुरक्षित रखता है। उन्होंने कहा, ऐतिहासिक परिस्थितियां अपने प्रकाश एवं अंधकार पक्ष के साथ हमें वास्तविक पुरुषों और महिलाओं, वास्तविक भावनाओं के बारे में बतलाती हैं, जो हमारे लिए जीवन की सीख होनी चाहिए, न कि किसी संग्रहालय में रखी गई वस्तु। उन्होंने प्रार्थना की कि ईश्वर स्पेन के शहरों की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षकों को उनकी सुंदरता और उनके लोगों के विश्वास, आशा और उदारता को प्रसारित करने में मदद करें। उन्होंने कहा, यह उन लोगों की पीड़ाएं और आकांक्षाएं हैं जिन्होंने समय के साथ अपने शहरों का निर्माण किया, संस्कृतियों एवं सभ्यता का मिश्रण जो एक दूसरे का अनुसरण करते हैं, और स्वाभाविक रूप से ईश्वर में उनका विश्वास है जो उनके दिलों को उत्साह के साथ धड़काता है। शहर और उनके सांस्कृतिक स्मारक निवासियों और आगंतुकों को उन्हें बनाने वाले की ताकत और विवेक पर विचार करने के लिए समान रूप से आमंत्रित करते हैं। संत पापा ने कहा कि वे न्याय और संयम की सीख से चुनौती लें, जो प्रत्येक ऐतिहासिक स्थिति में शामिल होता है। अतीत को संग्रहालय में बंद करके रखने के बजाय शहरों की विरासत को आज लोगों को बेहतर भविष्य बनाने में मदद करनी चाहिए। इस प्रकार हम लोगों के बारे में, व्यक्तियों के बारे में, एक ऐसे इतिहास के बारे में बात करेंगे जिस पर न केवल चिंतन किया गया है बल्कि उसे साकार भी किया गया है। रमजान के समापन पर मुसलमानों को दिए एक संदेश में पोप फ्रांसिस ने फिलिस्तीन, इसराइल, सीरिया और लेबनान में शांति की अपनी इच्छा व्यक्त की है और सद्भावना वाले सभी पुरुषों और महिलाओं से अपील की है कि वे हथियारों की होड़ की अशुभ हवाओं से प्रेरित आक्रोश की आग को भड़कने ना दें। उन्होंने नेताओं से लड़ाई एवं युद्ध के संभावित प्रसार को रोकने का आह्वान किया है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।